लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे चीन के कैथलिकों के लिए याचना करते हैं, ताकि कठिनाइयों के बावजूद चीन के लोग सुसमाचार में अपने विश्वास को सुदृढ़ करें तथा एकता में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत संत देव सहायम पिलाई की जीवनी पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत की कलीसिया एक धनी कलीसिया है, जिसने कई महान संतों को जन्म दिया है। उन संतों ने भारत का नाम विश्व में ऊंचा किया है। संतों ने अपने सुंदर जीवन से न केवल भारत किंतु विश्वव्यापी कलीसिया को भी प्रेरित किया है। हम उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। चौदह जनवरी को संत देव सहायम पिलाई का पर्व मनाया जाता है। वे भारत के पहले लोक धर्म संत होंगे। देव सहायम, जिनको पहले नीलाकंदन नाम से जाना जाता था, उनका जन्म सन 1712 में तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। देव सहायम शाही नौकरी करते थे एवं त्रावणकोर के राजा मारतंडा वर्मा के अति करीब थे। राजा उन्हें बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वे अपने कर्तव्य के प्रति वफादार थे। उन दिनों फसल अच्छी नहीं होने के कारण वे गरीब हो गए। इस स्थिति ने उन्हें तबाह कर दिया और वे सोचने लगे कि मैं इतना गरीब हो चुका हूँ, अब मुझे कौन सम्मान देगा। पिलाई ने अपने चिंता बेनेडिक्टस यूस्ताकियो दिलानोय नाम के एक डच कैथोलिक अधिकारी से साझा की। उस अधिकारी ने उन्हें जोब के ग्रंथ के आलोक में दुख का अर्थ समझाया। पिलाई के लिए जोब का उदाहरण एवं ईश्वर पर उनका विश्वास निर्णयात्मक था। ख्रिस्ते रहस्यों की सच्चाई से आश्वस्त होकर देव सहायम ने 9 महीने की तैयारी के बाद जेसुइट मिशनरी फादर जोआनी बत्तिस्ता बुतारी से 1745 में बपतिस्मा प्राप्त किया। बपतिस्मा में उनका नाम देव सहायम रखा गया, जो बाइबल के लाजरुस का तमिल अनुवाद है। बपतिस्मा के दिन देव सहायम ने यह कहते हुए अपने आप को ख्रिस्त को समर्पित किया, मुझे किसी ने इसमें आने के लिए दबाव नहीं डाला, मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से आया हूँ, मैं अपना हृदय जानता हूँ, वे मेरे ईश्वर हैं, मैंने उनका अनुसरण करने का निश्चय किया है और जीवन भर उनका अनुसरण करूँगा। इस तरह उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने अपने जीवन के 4 सालों को सुसमाचार की घोषणा करने के लिए समर्पित किया। इधर हिंदुओं ने उनके धर्मांतरण को पसंद नहीं किया। उन्होंने उन्हें धमकी दी, पीटा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया और 3 साल तक निर्बाध रूप से प्रताड़ित किया। अपने पीड़ा के बावजूद वे अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे। पति से प्रेरित होकर उनकी पत्नी भार्गवी अमल ने भी ख्रिस्ते धर्म स्वीकार किया। राजा ने पिलाई को पुनः हिंदू धर्म में वापस आने का आदेश दिया, जिसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। देव सहायम से प्रेरित होकर अनेक लोग ख्रिस्ते धर्म स्वीकार करने लगे, जिसको देखकर राजा ने 1749 में उन्हें देशद्रोह एवं जासूसी का आरोप लगाकर गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उन्हें कैद कर प्रताड़ित किया गया और अंततः निर्वासित कर जंगल में छोड़ दिया गया। कलीसिया के दस्तावेजों के अनुसार जंगल के रास्ते में उसे रोज पीटा जाता था। उनके घावों और नाक में काली मिर्च घोल दी जाती थी। उन्हें धूप में रखा जाता था और पीने के लिए गंदा पानी दिया जाता था। उन्होंने रोते हुए एक दिन ईश्वर से प्रार्थना की और अपने कोहनी से चट्टान को मारा, जहाँ से चमत्कारिक रूप से पानी बह निकला, जिसको वे पी सके। उस चट्टान से आज भी पानी बहता है, जिसका दर्शन करने तीर्थयात्री बड़ी संख्या में वहां आते हैं। आज भी लोग उस पानी को विश्वास से पीते हैं और उन्हें चंगाई मिलती है। देव सहायम केवल 7 साल तक कैथोलिक रहे, जिनमें से 3 साल वे विश्वास के खातिर कैद में अत्यधिक अत्याचार सहते हुए व्यतीत किए। अंत में 14 जनवरी 1752 को उन्हें गोली मार दी गई और उनके शरीर को वहीं जंगल में फेंक दिया गया। कुछ ख्रिस्तियों ने उनके शरीर को पाया और उन्हें संत फ्रांसिस जेवियर गिरजाघर में वेदी के सामने दफना दिया। यह गिरजाघर बाद में कोटार धर्म प्रांत का महागिरजाघर बन गया। उनकी शहादत के कुछ ही दिनों बाद आसपास के ख्रिस्ते उन पर श्रद्धा रखने लगे। उनकी धन्य घोषणा संत पापा बेनेडिक्ट 16वें द्वारा 2012 में की गई। 21 फरवरी 2020 को संत पापा फ्रांसिस ने उनकी संत घोषणा को अनुमोदन दिया है। आज संत फ्रांसिस जेवियर महागिरजाघर में उनकी कब्र का दर्शन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में आते हैं। उनका जीवन विश्वास का साक्ष्य देने की प्रेरणा देता है। बहुत अधिक अत्याचार सहने पर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनमें सुसमाचार प्रचार का उत्साह कूट कूट कर भरा था। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत संत देव सहायम की जीवनी पर लघु चर्चा सुन रहे थे।
चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक हैसियत। लेखक हैं माइकल होजेस। श्रोताओ, हमारी संस्कृति का एक ही संदेश है कि सच्चे अर्थों में मनुष्य बने तथा जीवन में सभी क्षेत्रों को मानवता से ओतप्रोत करें और संसार में से पशुता के अंधकार को हटाकर उस दिव्य आचार विचार की ज्योति प्रकाशित करें, जिसके प्रकाश में मानव प्राणी अपने आप को सच्चा इंसान अनुभव कर सके। और इसके लिए जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार दें, बचपन से ही उन्हें संवेदनशील बनाएं, जिससे कि वे दूसरों की खुशी, पीड़ा, उल्लास, सिसक, रोदन को अपने अंदर महसूस कर सकें, अपने बुजुर्गों का आदर कर सकें, घर के नौकरों का सम्मान करना सीखें। आशा है आज का नाटक इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है माइकल होजेस का लिखा नाटक हैसियत।
अरे आबिद, घंटे भर से तू एक ही जगह लगा हुआ है, टाइम पास कर रहा है या काम भी कर रहा है कुछ?
मैं तो यहाँ काम करने आता हूँ मैडम, और काम ही कर रहा हूँ।
बस तुम छोटे लोगों में यही तो गंदी आदत है, जरा सा कुछ कहो तो जबान दराजी करने लगते हैं, अपना कसूर ही नहीं देखेंगे।
मैडम, जितनी जल्दी आप काम निपटाने का कहती हैं, उतनी जल्दी मैं तो क्या, कोई भी नौकर काम खत्म नहीं कर सकता।
अच्छा अच्छा, अपना काम कर, ज्यादा जबान मत चला, अब्बा जान ने तुझे ज्यादा ही सर चढ़ा लिया है, तभी तेरी जबान इतनी चलने लगी है। पैरों की जूती सर पर रखेंगे तो यही तो होगा।
मैडम, मैं यहाँ बहुत मजबूरी में काम करता हूँ, आप मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं।
चल मान लिया कि घरों में काम करने की तेरी कोई मजबूरी होगी, मगर इसी घर में काम करने की क्या मजबूरी है तेरी?
साफ साफ कहूँ तो इसी घर में काम करने की मेरी एक नहीं, दो मजबूरियाँ हैं मैडम। एक तो ये कि नवाब साहब मेरे लिए फरिश्ते की तरह हैं, दूसरा ये कि आजकल कहीं पर काम बेहद ही मुश्किल में मिलता है मैडम।
साफ साफ कहना है तो ये क्यों नहीं कहता, और कहीं काम करेगा तो वहाँ नवाब साहब यानी मेरे अब्बा जान जैसे तुझे सर पर चढ़ाने वाले लोग नहीं होंगे।
अब आप कुछ भी कहिए मैडम, मुझे जो अर्ज करना था सो कर दिया।
ये हमारे अब्बा जान भी एक ही हैं, दूसरे घरों में देखो नौकरों की फौज है, लेकिन यहाँ इस नवाब खानदान में अब्बा जान ने फकत एक ही खिदमतगार नवाजा है, वो भी जबान दराज। उस पर अब्बा जान का कहना है सादगी से रहकर इंसान को अपने काम खुद अंजाम देने चाहिए।
मैडम आप जरा इधर तशरीफ लाएं तो मैं उधर की सफाई कर दूं।
अरे क्या तुझे दिखता नहीं मैं इधर बैठकर पढ़ाई कर रही हूँ, डिस्टर्ब मत कर मुझे, यहाँ की सफाई बाद में करना तू।
मैडम इस पूरे कमरे की सफाई अभी एक ही बार में हो जाएगी तो मैं इत्मीनान से दूसरा काम कर सकूंगा, वरना फिर वो काम बीच में आधा छोड़कर मुझे फिर ये काम करने हाजिर होना पड़ेगा।
तो तुझे अब्बा जान ने रखा किस लिए है, काम ही करने के लिए रखा है ना, काम चोर कहीं का।
मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ मैडम, उससे मेरे दूसरे काम में हर्ज होगा।
ओफो, ले उठ गई मैं यहाँ से, ये भी खूब है, घर मेरा और हुक्म चले यहाँ इनका, खिदमतगारों का, वाह क्या कहना।
मैडम आप गलत समझ रही हैं, मेरा यह आशय नहीं है।
ओह तो अब तू इतना बड़ा समझदार हो गया है कि तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं? क्यों?
अब मैं आपसे क्या कहूँ मैडम?
तुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, तेरी जबान दराजी बढ़ती ही जा रही है, अब मैं तुझे यहाँ से निकाल कर ही रहूंगी।
क्या बात है, हमारी चश्मे चिराग क्यों इतनी खफा हो रही हैं?
आप ही का लगाया ये पौधा अब इतना बड़ा हो गया है कि बागड़ को ही खाने की तैयारी में है।
क्यों आबिद, क्या बात है?
ये क्या बताएगा अब्बा जान, अब तो आपको इसे यहाँ से रुखसत कराना ही होगा।
मगर हमारी चश्मे नूर, इसकी खता भी तो बयां करो कि इसने तुम्हारी शान में गुस्ताखी क्या की है।
वही जो मैं आपसे पहले भी बयां कर चुकी हूँ, जबान दराजी और अब तो इसकी हिमाकत बढ़ती ही जा रही है, अब इसे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से रुखसत कीजिए, दफा कीजिए इसे यहाँ से।
चलो मैंने मान लिया कि ये खतावार है, मगर इसे अपनी खता पर अफसोस जताने का एक मौका भी तो दो।
क्या अब्बा जान, आप हर बार ऐसा ही करते हैं, इसी वजह से ये नामाकूल होते जा रहा है।
सुनो भाई, अपनी चश्मे नूर के कहने पर हम तुम्हें एक महीने की मोहलत देते हैं, अगर तुमने अपने तेवर नहीं बदले तो मजबूरन हमें तुम्हें बदलना होगा, क्या ख्याल है?
जी नवाब साहब।
तुम्हारा यहाँ का काम खत्म हो गया?
जी।
तो बाहर जाओ और कारें साफ करो, एक घंटे बाद इस घर की रोशनी चिराग कॉलेज जाएंगे।
बहुत खूब हुजूर।
अब्बा जान आपने इसे बहुत सर चढ़ा रखा है, इसीलिए ये इतना गुस्ताख हो गया है।
कतई नहीं बेटा, हम तो उसे सिर्फ इंसान समझते हैं और इंसान का ही दर्जा देते हैं।
किसे इंसान का दर्जा देते हैं जनाब?
उसी नालायक आबिद को, और किसे?
आपके अब्बा हुजूर बिल्कुल बजा फरमाते हैं, जाहिर है आबिद इंसान है तो उसे इंसान का दर्जा देना ही होगा बेटी।
शुक्रिया बेगम, वैसे भी इंसानियत का तकाजा ही है, ये तो हम सभी खुदा के हाथों बनाए हुए बुत हैं, लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आता कि हमारी साहबजादी आबिद से इतना खफा क्यों रहती हैं।
आबिद ही क्या, हमें तो उस जैसे हर छोटे लोगों से ही नफरत है जो कुछ न होते हुए भी खुद को आला समझते हैं। फिर ये आबिद और इस जैसे नाचीजों की हैसियत ही क्या है।
किसी इंसान और इंसान ही क्या, खुदा की बनाई हर चीज से हमें नफरत नहीं मोहब्बत से पेश आना चाहिए बेटी। फिर जहाँ तक हैसियत की बात है तो जुदा जुदा इंसानों की हैसियत जुदा जुदा ही होती है।
आप दोनों कुछ भी कहते रहें, लेकिन सच्चाई यही है कि हम एक नवाब खानदान की आला इंसान हैं और आबिद जैसे लोग हमारे सामने कौए के सामने हंस की तरह ही रहेंगे। हमारे कॉलेज का वक्त हो गया है, आधे घंटे में हमें निकलना है।
नीलोफर बेटा, आज आप एक काम करें, आज आप खुद ही अपनी कार ड्राइव कर लें, आबिद को मैं ले जा रही हूँ, बाजार से आज कुछ खरीदारी करनी है।
बेहतर है अम्मी जान।
हमारी औलाद भी न जाने कब औरों को अपनी तरह इंसान समझने की जहमत उठाएगी, हमारी ही बेहद मोहब्बत ने इन्हें इतना मगरूर बना दिया है।
जिस दिन जिंदगी में कोई आला कुदरती सबक मिलेगा उस दिन हमारी अजीज को भी खुदा अक्ल दे ही देगा। अरे भाई आबिद मियाँ, ओ आबिद मियाँ।
जी नवाब साहब।
जरा देखो फोन किसका है।
जी हेलो, हाँ मैं नवाब साहब के यहाँ से ही बोल रहा हूँ। क्या क्या कह रहे हैं आप? जी जी हम बस पहुँच ही रहे हैं।
क्या हुआ आबिद, किसका फोन था?
लाइफलाइन हॉस्पिटल से डॉक्टर बत्रा का फोन था, नीलोफर बाजी का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी पहुँचने को कहा है। मैं ऑटो से जा रहा हूँ, आप मालकिन के साथ कार से आ जाइएगा।
अरे बेगम बेगम,
क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हैं?
जल्दी तैयारी करो, हमारी साहबजादी का एक्सीडेंट हो गया है, लाइफलाइन में दाखिल है, आबिद ऑटो से गया है और अभी अभी वहाँ से डॉक्टर बत्रा का फोन भी आया था।
हमारी बच्ची, या खुदा।
बेगम ये समय रोने का नहीं है, अपने जिगर के टुकड़े के पास पहुँचने का है, जल्दी जरूरी सामान बांधो और चलो। अब कैसा महसूस कर रहे हैं हमारी बेटी?
ठीक है अब्बा जान, सर में बहुत दर्द है और दाएं पैर में भी।
वो भी ठीक हो जाएगा बेटा, डॉक्टर साहब ने कहा है अब आप खतरे से बाहर हैं।
मैं खुदा से दुआ करता हूँ बाजी, आप जल्द सेहतमंद हो।
हाँ बेटी, आपको पता नहीं होगा एक्सीडेंट के बाद बेहोश होने पर आपको यहाँ लाया गया और आपका बेहद खून बह चुका था, हॉस्पिटल में भी आपका ब्लड ग्रुप मिल नहीं रहा था। इतने में आबिद यहाँ पहुंचा और अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाया, ग्रुप मिल जाने के बाद आबिद का खून आपको चढ़ाया गया है और आपकी जान बचाई गई है।
क्या क्या कहा आपने, आबिद का खून मेरी रगों में?
हाँ बेटी, आबिद की वजह से ही आपकी जान बची है, आपको आबिद का शुक्रगुजार होना चाहिए।
इसमें शुक्रगुजार होने की क्या बात है मालकिन, ये तो मेरा फर्ज था।
ऐसा न कहिए आबिद भाईजान, आपने ही मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया, मुझे नई जिंदगी दी, मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ कर दीजिए आबिद भाई।
आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं बाजी।
अब तो आपको आबिद छोटा और बगैर हैसियत का नहीं लगेगा ना बेटी?
हम बहुत शर्मिंदा हैं अब्बा जान।
अब हमारी बेटी और आबिद की हैसियत एक सी हो गई है, क्योंकि अब हमारी बेटी की रगों में भी आबिद का वही खून बह रहा है।
हैसियत, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटक सुना। इस नाटक के कलाकार थे अपर्णा सिंह, समता बोरेकर, राजकुमार डोडेजा और माइकल होजेस। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।